जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर। निर्विण्णा नितरा भूमन्नसदिन्द्रियतर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्दं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारस्याद्यपारगम् स चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्।
आप लोगों को शायद मालूम हो कि प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट का जो स्वाध्याय प्रवचन है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, तो वहां के जो हमारे प्रतिदिन के उपयोगी हैं, एक सज्जन है अमेरिका के, उन्होंने, उनका नाम है गजेंद्र जी बॉकर, उन्होंने एक बात कही कि बहुत अच्छा हो अगर आप श्लोक भी बोला करो। पहली बात तो यह है, और शायद ऐसा कुछ और लोग भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि अभी पहली बात तो गीता शुरू ही नहीं हुई, कल शुरू किया है मैंने, है ना? अभी तक तो हम उसकी प्रस्तावना उसकी भूमिका में थे। श्लोक हमने बीच में बोले भी हैं, और मैं इस बात का हमेशा पक्षधर रहा हूं कि जो हम प्रवचन करें जिस विषय को लेकर करें उसके श्लोक बोलना ही चाहिए, मालूम पड़ना ही चाहिए। लेकिन मैं इस बात को भी बहुत ज्यादा महत्व देता हूं कि सुनने वाला इन बातों को न पकड़े। सुनने वाले का कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। अगर हम आग्रह पूर्वक सुनेंगे तो हम श्रोता नहीं रहे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर हम भी श्रोता बन के बैठे और मैं कोई आग्रह कर लूं कि मुझे ऐसा ही सुनाना, तो मैं श्रोता नहीं रहा, फिर तो मैं परीक्षक हो गया, फिर तो मैं अपनी राय देने वाला एक व्यक्ति हो गया कि आप सुनाइए, देखता हूं कहां गड़बड़ी है, फिर मैं बताता हूं। श्रोता बनकर के सुनने में ही लाभ है। यद्यपि मैं इस बात का पक्षधर हूं कि वक्ता को बोलना चाहिए, लेकिन श्रोता के लिए भी तो कुछ नियम है, और वे अगर आप और हम आत्मकल्याण की दृष्टि को रख करके सुनते हैं तो मुझे लगता है कि वक्ता को छोड़ दो स्वतंत्र, वो क्या करता है। दूसरी बात, विषय है कपिल गीता, इस विषय को कहने में हमको एक घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, कोई भी वक्ता कह सकता है। आप घर में जाकर के किताब उठा के पढ़ो, एक घंटे में आप पूरा कपिल गीता कपिलोपाख्यान पढ़ जाओगे, शायद जल्दी ही पढ़ जाओगे। कहानी में क्या है, कहानी में क्या घटित होने में टाइम लगता है, समय लगता है, बहुत जल्दी समाप्त हो सकती है। लेकिन प्रवक्ता के ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि उस कहानी से उसने क्या अनुभव किया वो दूसरों से बांटे। हमने क्या सीखा, हमने क्या अनुभव किया वो हम आपको दें, हम आपको बांटें। तो कहानी तो पीछे छूट गई, कहानी महत्वपूर्ण नहीं रही। अब महत्वपूर्ण ये रहा कि उस विषय में हमने पाया क्या, उस विषय में हमने अनुभव क्या किया। तो आप विषय को देख रहे हैं, कल आपने श्रवण किया निर्विण्णा नितराम भूमन्न सदिन्द्रिय तर्षणात्। बात बड़ी नहीं है कि देवभूति को मुक्ति करना है, देवभूति को अपना कल्याण करना है। उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी, तो बात बड़ी नहीं है, बात बहुत सहज है, बात सरल है। और वो कहती है कि मैं थक गई हूं, निर्विण्णा नितराम, निर्विण्णा का मतलब है उब गई, अब रस नहीं रहा। यह बहुत बड़ी बात है, और अगर तुम्हारे जीवन में भी यह घटित हो तो मैं तुम्हारे जीवन को भी बहुत बड़ा मानता हूं। अगर ये एक बार हमारे मन में घटित हो जाए तो मैं अपने मन को भी बहुत बड़ा मानूंगा कि ये बात अनुभव तो किया उसने। बात क्या है? बात मात्र इतनी है, निर्विण्णा नितराम भूमन रसद इंद्रिय तृष्णा, मैं ऊब गई हूं, जीवन में अब रस नहीं रहा, जीवन अब नीरस मालूम पड़ने लगा, अथवा ऊब गई हूं का मतलब किस चीज से ऊब गई हूं, ये भी तो है। कई लोग कथा से ऊब जाते हैं कि महाराज वही वही सुना रहे, ये तो 50 बार सुन चुके हैं। हमने एक सज्जन को कहा कि आप कथा सुनने नहीं आते, बोले महाराज 50 बार सुन चुके हैं, कोई मतलब नहीं रहा, कितनी बार सुनेंगे, वही कहानी वही कथा वही सुखदेव वही परीक्षित वही राजा, इसका मतलब उसने कथा सुनी ही नहीं। अगर मैं आपको आमंत्रित करूं कि रसगुल्ला खाइए आप, तो आप ये नहीं कहेंगे 50 बार खा चुके हैं, आप पुनः तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसके रस की अनुभूति की है, आपको पता है कि उसका स्वाद क्या है, आपको पता है कि उसका टेस्ट क्या है। हाँ, अगर आपको नहीं खाना हो तो आप बहाने बना सकते हैं कि नहीं 50 बार खा चुके अब नहीं इच्छा है, लेकिन हो सकता है घर में जाके खाओ, सामने वाले को जवाब देने के लिए कुछ बोलना है, इसलिए जरूरी है कि बोल दिया कि नहीं खाना है, कि 50 बार खा चुके लेकिन तुम्हारे मन की तृप्ति नहीं हुई वहां रस, क्योंकि रस की अनुभूति हो चुकी है। डॉक्टर मना करेंगे तो भी तुम खाने की इच्छा रखोगे कि थोड़ा तो थोड़ा कुछ नहीं होता है, क्या है, डाइट चीजें बनी रहेगी, ये गोली और ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रस की अनुभूति हो चुकी है, रस मालूम पड़ चुका है, तो तुम छोड़ नहीं सकते, त्याग नहीं कर सकते। ये तो सामान्य बात है, और जो कथा को कह देते हैं छोड़ देते हैं कि 50 बार तो सुन चुके हैं, उन्होंने रस सुना जरूर है लेकिन रस की अनुभूति उन्होंने नहीं हुई। रसगुल्ला शब्द सुना होगा लेकिन उसका टेस्ट उन्होंने नहीं किया, कथा उन्होंने सुनी लेकिन कथा का जो आनंद है, कथा का जो रस है, उसकी अनुभूति से वो बहुत दूर हो गए। निर्विण्णा, मैं ऊब गई हूं, किस चीज से, क्या जिंदगी से ऊब गई हूं? तो देवभूति बड़ी मजे की बात कहती है कि जिंदगी से नहीं, जीवन से नहीं, इस भागदौड़ से ऊब गई हूं। भागदौड़ शांति की जो पिपासा थी उसके लिए जो हम भाग रहे थे उससे ऊब गई हूं। उबने का अर्थ है कि आपको इतना समझ में आ गया है कि यहां सुख नहीं है, ये बात ध्यान देना। महत्वपूर्ण शब्द ये है, महत्वपूर्ण शब्द यही है, उबने का तात्पर्य है, उबने का अर्थ है कि हमको ये समझ में आ गया है कि यहां सुख नहीं है, यहां शांति नहीं है। आंखों के द्वारा जो हम रूप देखते हैं, हम समझते थे कि यहां सुख है लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं है। कानों के द्वारा जो हम गीत सुनते थे लगता था कि सुख है लेकिन आज हमको पता चल गया कि नहीं है, क्योंकि हम बहुत भागे, बहुत भाग दौड़ी थी लेकिन अब कुछ हासिल नहीं हुआ। स्पष्ट करती है, नितराम हमेशा भूमन असद इंद्रिय दर्शनार्थ, हे प्रभु हे नाथ असद इंद्रिय दर्शनार्थ। अखंडानंद जी महाराज को मैं पढ़ रहा था, बड़ा बढ़िया कहा, असत दुष्ट कहा है इंद्रियों को, ये इंद्रियां दुष्ट हैं, ये इंद्रियां असत हैं, इन इंद्रियों ने तंग कर लिया हमको, ये इंद्रियां हमारी शत्रु हैं। मैं किसी संत को सुन रहा था और उन्होंने बहुत बढ़िया कहा कि देवभूति ने कहा कि मैं परेशान हूं, दुखी हूं, तो भगवान ने कहा कि ये दुख तुमको किसने दिया? तो देवभूति कहती है अपनों ने दिया, अपनों ने दिया। भगवान ने कहा अपनों ने, क्या तुम्हारे पिता ने दुख दिया? बोले नहीं नहीं, पिता तो बहुत बढ़िया सात्विक महाराज है, वो भला दुख क्यों देंगे? तो पति ने, बोले वो ऋषि महात्मा है, वो भला दुख क्यों देंगे? तुम्हारी बेटियों ने, बोले नहीं, विवाह करके गई वो, अपने अपने घर बैठ गई जाकर के, कोई दुख नहीं देने वाली। तो भगवान ने कहा फिर अपनों में तो मैं ही बचता हूं, मैंने दिया। तो कहा नहीं, आप तो भगवान है, आपके हाथ तो दुख है ही नहीं, देंगे कहां से? तो फिर ये अपने कौन है? बोले नहीं, ये लोग तो जरा दूर के अपने, बिल्कुल अपने, ये आंख, इस आंख ने हमको दुख दिया, ये कान, इस कान ने हमको दुख दिया, इन इंद्रियों ने हमको दुख दिया। और ये बड़ी मजे की बात है कि कोई आदमी ये अनुभव कर ले कि हमारी इंद्रियों ने हमको दुख दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि आंख से टेलीविजन देखने पर हमें सुख की अनुभूति होती है, हमें तो यह अनुभव आता है कि इस आंख ने हमको सुख दिया, हमें तो यह अनुभव आता है कि कानों के द्वारा संगीत सुनने के बाद हमको सुख की अनुभूति हुई, ये कान तो सुख देने वाले हैं। लेकिन देवभूति उल्टी बात कहती है, क्यों? क्योंकि वो ऊब चुकी है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है, क्योंकि विवेक उनके हृदय में उतर आया है, उन्होंने अनुभव किया है, पता चला है उनको कि आंखियां, ये आंखें सुख देती हुई प्रतीत होने के बाद में भी सुख नहीं देती। क्यों? क्योंकि अभिलाषा बढ़ती जाती है, अभिलाषा इच्छा बढ़ती जाती है। मैं आपसे पूछता हूं कि कौन सा ऐसा रूप है जो आपकी आंखों ने न देखा, कोई बचा है? कुछ शेष है? लेकिन ईमानदारी से बताना, कि तुम्हारी आंख ने कभी कहा कि बहुत देख लिया, अब बंद कर लो, कुछ जरूरत नहीं देखने की? कभी कहा? धन्यवाद दिया। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आप किसी दूसरे आदमी को एक गिलास पानी देते हो, जल देते हो, तो अपेक्षा करते हो कि वो हमको थैंक यू कहे, वो धन्यवाद कहे कि आपने हमको पानी दिया। इन आंखों के लिए जिंदगी भर जीते रहे, इन आंखों ने एक बार भी धन्यवाद नहीं दिया कि बहुत हुआ, अब इच्छा नहीं देखने की, अब तुम अपने लिए भी जियो। इन कानों के लिए हम जिंदगी भर भटकते रहे, न जाने कितना पैसा बर्बाद किया, इन कानों ने कभी धन्यवाद नहीं कहा। इस रसना के लिए कितनी कष्ट सहे, कितनी मुश्किलों में पड़े, पेट तो हमारा सूखी रोटी खा करके भी भर सकता था, लेकिन इस रसना के लिए, इस स्वाद के लिए हमने न जाने कितने पापड़ बेले, कितनी मेहनत की, लेकिन इसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हुई। इस रसना ने नहीं कहा कि अब कुछ इच्छा नहीं, उल्टा हो गया, डॉक्टर मना करते हैं तो भी कहती खा लेते हैं, होगा तो देखा जाएगा, थोड़ा तो रस मिलेगा। ये इच्छाएं, ये तृष्णाएं गजब की। हमारे यहां एक महात्मा थे, हमारे आश्रम में बूढ़े थे, दांत नहीं थे उनको, मैं छोटा ही था, तो चने खाने लगा मैं। हम दो लोग बैठ के खा रहे थे, तो पास में वो महात्मा बैठे, हमने कहा इनको क्या देना, इनके तो दांत ही नहीं है, बिना दांत का आदमी चना कैसे खाए, मैंने नहीं दिया। तो बाद में वो नाराज हो गए, हमसे बात नहीं किया। हमने कहा कि आप बात नहीं कर रहे हो, क्या बात है? मैंने कोई भूल की, अपराध किया? तो कहा अपराध? तुमने चने खाए, हमको दिया ही नहीं। मैंने कहा कि आपको देता कैसे, अगर दे भी देता, मैंने तो ये सोचा कि आप खा नहीं सकोगे इसलिए नहीं दिया, आपके तो दांत नहीं। बोले तुम देते तो सही, हम तो खा लेते। हमने कहा कैसे खा लेते? तो कहा पीस करके खा लेते। और मैं छोटा जरूर था, लेकिन हृदय में ये लगी बात कि आदमी 70 साल का आदमी है ये, क्या इसने जीवन में चने नहीं खाए, क्या चनों का स्वाद नहीं लिया? आज अगर दांत नहीं है तो भी चने खाने की इतनी प्रवृत्ति है कि पीस के खा लूंगा, लेकिन दो तो सही। हमें तरीके आते हैं संसार से। रमन की एक बात याद आती है, महर्षि रमन की, बहुत बढ़िया बात लगी मुझे, ध्यान देना आप लोग साधक हो। एक सज्जन गए रमन के पास में और कहने लगे महाराज मैं बड़ा परेशान हूं। तो रमन ने कहा क्या बात है? बोले कानों से सुनाई कम पड़ता है, सुनाई नहीं पड़ता। रमन मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छा हुआ, अच्छी बात है ये। तो कहा अच्छी बात है, कानों को सुनाई नहीं पड़ता, ये अच्छी बात कहां से होगी? तो रमन कहने लगे उस परमात्मा को पाने के लिए इंद्रिय निग्रह की जरूरत बहुत है, एक इंद्रिय का परमात्मा ने निग्रह कर दिया, तुम्हें करने की जरूरत नहीं। समझ रहे हैं? कितनी प्यारी बात है। दांत टूट गए तो परमात्मा ने कृपा कर दिया कि जो दांतों से खाने वाली चीजें थी छूट गई अपने आप, मेहनत करने की जरूरत नहीं। दांत टूट गए, परमात्मा तुमको संकेत दे रहा है अब छोड़ दो, अब बचने की कोशिश करो, अब तुम खाली शरीर जिलाने के लिए कुछ खाना है तो खाओ, अब झंझट में मत पड़ो। लेकिन हम भी बड़े चालाक, परमात्मा को जवाब दे, अच्छा दांत तुमने चुरा लिए, मैं नकली लगा के खाऊंगा। तुम कितना दूर करोगे? और हमको बचपन में हमको सिखाया एक महात्मा ने, बहुत बढ़िया बताया कि इंद्रियां तुम्हारा साथ छोड़ देती हैं। क्या बात है? इंद्रियां तुम्हारा साथ छोड़ देती हैं, इंद्रियां तुम्हें उपदेश करती हैं, इंद्रियां तुम्हें संदेश देती हैं कि अब छोड़ो, बहुत हुआ। आंखों ने देखना बंद कर दिया कि नहीं नहीं अब रहने दो, जरूरत नहीं है, हम चश्मा लगा के देखते। कानों ने सुनना बंद कर दिया तो मशीन लगा करके सुनते हैं। क्या विचित्र बात है। तुम्हें जितना दूर होना चाहिए हम उतना ही संसार में घुसते चले जाते हैं। रायपुर में एक माता जी थी, बूढ़ी थी, दिखाई नहीं पड़ता था, सुनाई नहीं पड़ता। हम लोग वहां गए तो माता जी आई, उन्होंने कहा महाराज कुछ सुनाइए, कुछ सत्संग की बात कहिए। तो उनके लड़के ने कहा कि स्वामी जी ये तो सुनती नहीं है, ऐसी बोल रही। तो मैंने कहा आपको सुनाई नहीं पड़ता? तो बड़ी प्यारी बात कही। बोले नहीं नहीं आपकी बात सुनाई पड़ती है, इन लोगों की नहीं सुनाई पड़ती। आप दिखाई पड़ रहे हैं, आप दिखते हैं, लेकिन ये लोग दिखाई नहीं पड़ रहे, इनके लिए हम अंधे हो गए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इनके लिए हम बहरे हो गए, संसार के लिए हम अंधे हो गए, संसार के लिए बहरे हो गए, लेकिन आप नजर आ रहे हैं, हमें मालूम है कि कहां बैठे हैं आप, आपका दर्शन हो रहा है, आप जो कहोगे वो सुनाई भी पड़ेगा। कितनी प्यारी बात है। हमारा जीवन अंधा होना ही चाहिए संसार के लिए, हो ही जाना चाहिए बहरा संसार के लिए। बहुत सुन लिया संसार की बातें, बहुत देख लिया संसार को, अब जरूरत क्या, क्या करोगे, करोगे क्या? लेकिन हमारा मन तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई, सब कुछ खत्म हो गया लेकिन तृष्णा नहीं बूढ़ी हुई। मैं कहां तक कहूं, मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी छोटे में ही, बचपन में ही, कि हम क्या कहें आपको। कलकत्ता गया एक बार और वहां एक सज्जन को मैंने देखा, बहुत बूढ़े थे, बहुत वृद्ध थे, 100 वर्ष से ऊपर के होंगे। उन्होंने अपनी चौथी पांचवी पीढ़ी देखी, और पांचवी पीढ़ी को देखना तो पुण्यकर मानते हैं लोग, अच्छा मानते हैं। और चौथी पीढ़ी का जो लड़का था उसकी शादी थी, शादी सब तैयारियां चल रही थी। मैंने देखा कि ये आदमी तो सबसे ज्यादा सुखी, और उनके बच्चे भी बड़े अच्छे अपने उन बूढ़े पिता की सेवा कर रहे थे, ख्याल रख रहे थे। जैसी जैसी मैंने कहानी कही है कि आंख भी नहीं देख रही है, कान भी नहीं सुन रहे हैं, कमर बिल्कुल झुक गई है, बुरी हालत, चारपाई से उठ नहीं सकते इस स्थिति में, तो मैंने कहा यह आदमी तो खुश होगा, इसको कुछ इच्छा नहीं होगी। पास में गया, पूछा और मैंने कहा कि बाबा तुमको तो कोई इच्छा नहीं है, अब सारी इच्छाएं पूरी हो गई। और मेरी ये धारणा थी कि ये आदमी कहेगा कि नहीं कोई इच्छा नहीं है, परमात्मा ने सब कुछ दिया। तो पहले तो उनको हमारी बात सुनाई नहीं पड़ी, मैं जोर से नहीं चिल्ला सका। तो लड़के ने कहा कि महाराज पूछ रहे हैं कि तुम्हारी कोई इच्छा तो नहीं, कोई अभिलाषा तो नहीं? और गजब आश्चर्य मुझे लगा जब उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहा एक है इच्छा, एक इच्छा है। मैंने कहा अभी भी एक इच्छा है? तो उत्सुकता जागी मेरे हृदय में भी कि जानू तो सही कौन सी है। मैंने कहा क्या इच्छा है, अब क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं? तो जो पांचवी पीढ़ी का लड़का खेल रहा था तो हमसे कहते हैं महाराज इसकी शादी देखना चाहता हूं, क्या करेंगे, ये दुनिया, ये संसार इतना विलक्षण है। संसार को छोड़ो, हम इतने विलक्षण है, हमारा मन इतना विलक्षण है, हम दुनिया को दोष देते हैं, हम संसार को दोष देते हैं, हम माया, अज्ञान, अविद्या, न जाने कितनी गालियां सुन चुके होंगे, सुना चुके होंगे, लेकिन हम अपने अंदर में बैठी हुई उस माया के दूत को तो देखें जरा, हम अपने मन को तो देखें जरा, हम अपने स्वभाव को तो देखें जरा कि हम कहां हैं, हमारी आज की प्रवृत्ति कहां है, हमारा आज का मन, आज का स्मरण, आज का चिंतन कहां है। निर्विण्णा नितरां भूमन्न सदिन्द्रिय तृष्णात्, देवहूति कहती है सुनो हमारी यह अनुभूति है कि इंद्रियों को पानी पिलाते पिलाते थक गई मैं, लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझी। इंद्रिय तर्षणात यानी इनकी जो प्यास है ना, ये प्यास इनकी बुझी ही नहीं है, ये हमेशा प्यासी है, हमेशा कहती है कि लाओ और दो और दो, आप कितना भी दिखाओ लेकिन इनकी इच्छा पूरी नहीं होती। ये विषय बदलने की बात कहेंगी, ये एक फिल्म देखते देखते उब जाए तो दूसरे की इच्छा करेंगी, लेकिन ये नहीं कहेंगी कि बस हो गया अब नहीं चाहिए, विषय बदलेंगी। अगर तुमने सिंगापुर देख लिया है तो इंडोनेशिया देखने की इच्छा करेंगी, अगर अमेरिका देख लिया तो लंदन देखने की इच्छा करेंगी, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि बस हो गया, घूमते रहो, भटकते रहो, और तुम्हें भटकने में मजा आता है। इंद्रियां भटकाती हैं, तुम तैयार रहते हो, मन ने बाद में कहा, तुम पहले से बैग तैयार रखते हो कि कहो तो हम तो खड़े हैं, आदेश तो दो, हम नौकर हैं तुम्हारे, गुलाम हैं, कह के तू देखो, लेकिन ये गुलामी करते करते जीवन गुजर गया, ये गुलामी करते करते बर्बाद हो गए, मिला क्या, हासिल क्या हुआ, कुछ नहीं। निर्विण्णा नितरां भूमन नसत इंद्रिय तृष्णात, माता देवहूति कहती है कि मैं ऊब गई हूं महाराज इंद्रियों को पानी पिलाते पिलाते। कहा क्यों पिलाया, क्यों पानी, जरूरत क्या थी जब तुमको समझ में आ गया, जानती थी तो कहा ये न संभाव्य माने न प्रपन्नांदम तमा प्रभु। इस अज्ञान के अंधकार में हम ऐसे डूबे, ऐसी डुबकी लगाई कि कुछ नजर ही नहीं आया, अंधेरा था, पता ही नहीं चला, मैं अंधेरे में थी, मैं सोचती थी कि शायद आंखों को रूप का दर्शन करवाने से उस शांति की खोज पूरी हो जाए, मैं सोचती थी कि अमुक गीत सुनने के बाद शायद शांति की पिपासा की खोज, शांति की पिपासा समाप्त हो जाए, ऐसे इंद्रियों के कहने पर बहकावे में आकर भटकती रही, क्योंकि अज्ञान थी, मुझे कुछ पता नहीं था, बोध नहीं था, विवेक की किरण नहीं उतरी थी, अनजाने में सब हो गया, आज मुझे पता चला, अच्छी बात है। कहावत आपको प्रसिद्ध है कि दिन भर का भूटा भूला अगर भटका हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भटका हुआ नहीं मानते, अच्छी बात है कि मरने से पहले और तुमको ये याद आया, ये स्मरण हुआ कि हम ऊब गए, किस वजह से, अज्ञान की वजह से। देवहूति को पता चला, लेकिन हमारे यहां ये शाम गुजर रही है लेकिन हम नहीं, हमें नहीं पता चल रहा, हमें मालूम नहीं हो रहा और हम अभी भी उस लालसा में भटकते चले जा रहे हैं, उसका कोई अंत नहीं, उस आकर्षण में फंसे चले जा रहे हैं। कल मैं कहानी पढ़ रहा था, पश्चिमी एक विचारक हुए हैं टॉलस्टॉय, उन्होंने बहुत बढ़िया एक कहानी लिखी, बहुत अच्छी। उन्होंने कहा कि एक आदमी था, उसको पता चला कि दूसरे गांव में कहीं बड़ी सस्ते दामों पर जमीन मिल रही है तो खरीद लो, और बड़ी प्रसिद्ध कथा है। वो आदमी वहां गया अपना घरबार बेच करके, गांव वालों से पूछा कि यहां जमीन मिल रही है, हमने ऐसा सुना है। गांव वालों ने कहा सही सुना, तो सस्ते दामों पर बोले, हां तो कितनी मिलेगी, क्या हिसाब है? उसने कहा जितनी संपत्ति लाए हो दे दो और जितनी जमीन चाहते हो ले लो, कोई माप नहीं, कोई मीटर, कोई फुट, कुछ नहीं है, जितना तुम दौड़ सकते हो दौड़ लो, जितना तुम घेर सकते हो घेर लो, सारी जमीन तुम्हारी, लेकिन शर्त एक ही है। क्या? तो कहा कि सूर्यास्त से पहले वापस लौट के आना होगा, अभी से दौड़ना शुरू करो, सूर्योदय से दौड़ना शुरू करो और सूर्यास्त के पहले पहले तुम वापस आ जाओ, जितनी भी तुम खूटी गाड़ते चले जाओगे उतनी जमीन तुम्हारी। उसने सोचा ये तो बहुत बढ़िया है, सारा पैसा दे दिया। बोले अगर नहीं वापस आ सके तो खत्म, जो पैसा तुमने दिया था बर्बाद, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ये तैयार हुआ, इसने दौड़ना शुरू किया, ताकत से दौड़ा भागा, और सोचता था कि मैं वापस पहुंच जाऊंगा, लेकिन लालचमन का कि अभी और, ये तो और बढ़िया जमीन है, और उपजाऊ जमीन है, और अच्छी जमीन है, लालच बढ़ता गया, दौड़ता गया दौड़ता गया दौड़ता गया। दोपहर हो गई, कहा आप तो वापस लौटना चाहिए। बोले नहीं लौट जाऊंगा, थोड़ी और थोड़ी और और थोड़ी और करते करते जब देखा कि नहीं अब तो बहुत ज्यादा विलंब हो रहा है, तो भागा वापस, और वापस आते आते सूर्यास्त हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा, सब समाप्त हो गया। और मैं ये समझता हूं कि कहीं हमारी भी ये दौड़, परमात्मा ने हमको छोड़ रखा है कि तुम्हें परमानंद मिलेगा, जाओ तुम्हें छोड़ता हूं, लेकिन जिंदगी समाप्त होने से पहले पहले वापस लौट के आ जाओ। जिंदगी समाप्त होने से पहले पहले अपने आप को जान लो, परमात्मा को जान लो, मुझे पहचान लो। अगर समझ गए तो परमानंद की प्राप्त करवाने की गारंटी हमारी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की दौड़ पूरी हो उससे पहले जानना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है जान लेंगे, क्या जल्दी है। तो इसलिए किसी ने कहा भी, महात्मा ने कहा भी कि चलो तुम्हें परमात्मा को जानना है। बोले अभी उम्र ही क्या हुआ, कहां हुई है। और कई लोगों को कहो, मैंने माता जी से कहा कि आप कथा में नहीं आती, तो कहने लगी हमारी उम्र ही कहां है अभी कथा में आने की। मैंने कहा मेरी कहने की हो गई, तुम्हारी सुनने की नहीं हुई। इतना तो सोचो जरा, और कथा में भी आने की कोई उम्र है। तो दूसरी माता जी से मैंने दूसरी माता जी से कहा इनको समझाओ कथा में आए, नेहरुल की बात है। तो उन्होंने उनसे कहा कि नहीं हम नहीं जाएंगे। हमने कहा वजह क्या है, परेशानी क्या, कथा कोई बुरी चीज है? तो कहती नहीं कथा में जाएंगे तो लोग मुझे बूढ़ा समझने लगेंगे, लोग समझेंगे कि उम्र हो गई इनकी खत्म, इसलिए अब कथा भागवत में लग गई। लोग कहते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे परमात्मा का, अभी उम्र कहां है, अभी तो संसार भोगने के लिए उम्र है। ये वही गलती कर रहे हैं जो उस आदमी ने की। वो आदमी सोचता था कि जब हम शाम हो जाएगी तब वापस दौड़ेंगे, हम पहुंच जाएंगे अपने लक्ष्य तक। ये वही गलती कर रहे हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब हम चिंतन करेंगे, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। अंत में जब आते हैं और तब कमर दर्द करती है, अंत में जब आते हैं तब घुटने दर्द करते हैं, अंत में जब आते हैं शरीर साथ छोड़ देता है, हम क्या कर सकेंगे। इसलिए जब, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर शरीर से वृद्ध हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते। आप हिम्मत मत हारना, तुम्हारे पास अभी भी मौका है, अभी भी समय, तुम्हारे मन में वो ताजगी है। अगर तुम हिम्मत करो, हिम्मत रखो, वहां तो उसे दौड़ करके एक जगह पार करना है, इसलिए समय लग सकता है, शरीर वहां साथ छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारे यहाँ कोई दौड़ नहीं है। तुम्हारे मजे की बात देखिए, तुम्हारे यहाँ दौड़ खत्म करनी है, तुम्हें दौड़ना बंद करना है, इसलिए तुम्हारे पक्ष की बात है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, वहां दौड़ जारी रखनी थी तब वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाता, और यहां उल्टा है मामला। यहां उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें अपनी दौड़ बंद करनी पड़ेगी। तुम जो चल रहे हो, भाग रहे हो, उसको समाप्त करो, उसे छोड़ दो, यहीं रुक जाना, और ये रुकना ही तुम्हारे लिए उस परमात्मा की प्राप्ति का देवता होगा। तो तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे हाथ से बाजी निकल गई, अब ये मत सोचना कि अब हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, उसको जान नहीं सकते। देवहूति जान सकती है तो हम क्यों नहीं जान सकते। परीक्षित के पास 7 दिन के मौका था खाली, वो 7 दिन में जान सकते हैं, तो कम से कम 7 दिन की तो जिम्मेदारी है ही हमारे पास है, हमारे पास वक्त है, शायद हो तो मौका है अभी हमारे पास, इसको जाने मत दो, पकड़ लो, अपनी दौड़ को खत्म करो, समाप्त करो, स्थिर हो जाओ, रुक जाओ, ठहर जाओ। ये न संभाव्य माने न प्रपन्नांधम तम प्रभु। विभूति कहती है कि मैं अंधकार में पड़ी हुई थी, अंधेरे में जी रही थी, मुझे कुछ होश ही नहीं रहा, मुझे पता ही नहीं चला। तो बहुत बढ़िया बात, तस्यत्वं तमसोंधस्य दुष्पारस्याद्यपारगम। एक बात और कि कोई चीज अगर आपको नजर ना आए अंधेरे में, यह ज्यादा बुरा है या अंधेरे में कुछ का कुछ नजर आए यह ज्यादा बुरा है? नहीं समझ, ये बात, कुछ नहीं नजर आए कोई बात नहीं, तुम्हें धोखा नहीं होगा, कम से कम तुमको यह तो नहीं लगेगा कि अरे ये क्या हुआ, तुम्हें पता है अनजाने में हुआ, जाना नहीं था, पता नहीं था। लेकिन अगर कुछ का कुछ नजर आए तो बहुत बड़ी मुश्किल है। शायद अगर ये देवहूति कहती है मैं अंधकार में पड़ी हुई थी या मैं अंधी हो गई तो ये सही है उनके पक्ष में, लेकिन हमारे यहां उल्टा है। हमारे यहां मुश्किल ये है कि हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है ऐसा नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा नहीं है, हमारे यहां मामला यह है कि कुछ का कुछ दिखाई पड़ रहा है। जो असत है, जो झूठा है, जो नश्वर है, जो समाप्त हो रहा है, वो हमें सत्य नजर आ रहा है, ये कुछ का कुछ हो गया। जहां दुख ही दुख भरे पड़े वहां हमें सुख नजर आ रहे हैं। असारा खल संसारो दुख रूपी विमोह का, जो असार है वो संसार नजर आ रहा है और जो दुख रूप है वो सुख रूप नजर आ रहा है। एक महात्मा ने पूछा, महात्मा से पूछा किसी ने कि ये दुख रूप है तो सुख रूप नजर क्यों आ रहा है? बोले विमोह का, मोहित कर देता है, जैसे जादूगर तुम्हारी बुद्धि को ऐसा मोहित कर देता है, दृष्टि को ऐसा बदल देता है कि जो नहीं होता है वो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसी माया की जादू ने ऐसा कमाल किया कि विमोह का, बड़े बड़े ऋषि लोग फंस गए, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े समझदार फंस गए, समझ नहीं पाए कि ये दुख रूप है कि सुख रूप है, और उनको यही लगा कि ये सुख रूप है। तो कहा यहां कुछ का कुछ प्रतीत होने लगा, कुछ का कुछ नजर आने लगा, तो करें क्या? तो देवहूति कहती महाराज हमने एक बात समझा, एक बात जाना, तस्यत्वं तमसोंधस्य दुष्पारस्याद्यपारगम। ये जो मैं अंधी हूं उस अंधी के लिए आप आंख के रूप में मिले हैं मुझे, क्या बात है। हमारे आंखें नहीं थी, अथवा जो आंख थी उससे सच नहीं दिखाई पड़ रहा था, जो आंख हमको प्राप्त हुई, जो आंख हमको मिली, उस आंख ने कुछ का कुछ दिखाया हमें, कुछ का कुछ नजर आया हमें, इसलिए हम भटकती चली गई, इसलिए हम परेशान होती चली गई। तो आप हमको सचक्षुर जन्मनामंते लब्धम मे तदनुग्रह, आप मुझे आंख के रूप में प्राप्त हुए हैं। ये कौन है? कपिल भगवान है, और महात्मा के रूप में आए हैं, ध्यान रखना, संत के रूप में आए हैं। तो यहां ये संदेश है, यहां ये उपदेश है कि संत हमारे जीवन, हमारे अंधेरे जीवन में आंख की तरह है, संत हमारे भ्रमित वाले जीवन में आंख की तरह है। अगर आपको अपनी आंख से सही नजर नहीं आ रहा तो संतों की आंखों से देखो। और मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि इस दुनिया को जब जब तुम अपनी आंखों से देखोगे तो ये दुनिया तुम्हें कुछ और नजर आएगी, लेकिन इसी दुनिया को जब तुम संतों की आंखों से देखोगे, संतों की दृष्टि से देखोगे, तो इस दुनिया की तुम्हें वास्तविकता नजर आएगी। कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज तुम नजदीक से देखो, तो देखो जरा, तब तुम्हें पता चलेगा कि उस चीज की वास्तविकता क्या है। परीक्षण करके देखो जरा, तब तुम्हें उस चीज की असलियत मालूम पड़ेगी। चमकता हुआ तो सब कुछ नजर आता है। मैंने किसी को सुना है, नजा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ अक्ल दानिश है। जो तुम्हें प्रचार नजर आ रहा है, जो तुम्हें जाहिर करके, सूचना करके तुम्हें बताया जा रहा है कि बढ़िया है, ये बढ़िया है, बोले उस पर मत जाना। नजा जाहिर परस्ती पर, बाहर तुमको जो नजर आ रहा है, दिखाई पड़ रहा है, उस पर मत जाना। अगर कुछ अक्ल दानिश है, अगर उस परमात्मा ने तुम्हारे भेजे में अगर कुछ भेजा है ना, कुछ अक्ल है, अगर कुछ बुद्धि है थोड़ी बहुत, तो प्रचार पे मत जाना, जो दिख रहा है उस पर मत जाना। क्यों? चमकता जो नजर आता है सब सोना नहीं होता। चमक को देख करके तुम भ्रम में मत पड़ना कि यह सोना होगा। तो तुम्हें जो कुछ नजर आ रहा है ऐसा मत समझना कि यह सच ही होगा। अगर तुम ये जानना चाहते हो कि यह सच है कि झूठा है, तो कसौटी पर कस के देखो, घिस के देखो, पता चल जाएगा। सोना रंग नहीं छोड़ता, और नकली चीज तुरंत बता देगी कि वो क्या है। ठीक इसी प्रकार से ये जो महात्माओं की जो आंख है, महात्मा जो हमको आंख के रूप में मिले हैं, उनकी बातों पर, उनकी कसौटी पर अगर इस संसार को कसोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि दुनिया क्या है। और उपनिषद, वेद भगवान, शायद इतनी स्वतंत्रता दुनिया के किसी भी धर्म ने नहीं दी होगी। शायद इतनी स्वतंत्रता व्यक्ति को संसार के किसी भी संप्रदाय ने नहीं दी होगी। उपनिषद कहते हैं परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्तिकृता कृतेन। तुम परीक्षण करके देखो, श्रुति भगवती कहती है कि हमने जो तुमसे कहा वो तुम मत मानो, तुम्हें हम इतनी स्वतंत्रता देते हैं कि जो हमने कहा वो मत मानो। हमने कह दिया संसार झूठा है तो तुम मान लो, बिल्कुल नहीं। हमने कह दिया कि वो परब्रह्म परात्पर तत्व परमात्मा सत्य है तो तुम मान लो, बिल्कुल मत मानो। तो परीक्षण करो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो, हे ब्राह्मण तुम अपनी बुद्धि से अपने विवेक से परीक्षण करके देखो जरा, तुम्हें पता चलेगा कि क्या है। और हम तुमको बताए दे रहे हैं कि कर्म के द्वारा जो भी प्राप्त होगा वो सब अनित्य होगा, समाप्त हो जाने वाला होगा। कर्म के द्वारा जो जो तुम्हें मिलेगा, जो जो वो सब खत्म हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है। वो एक भी सुख, वो एक भी पदार्थ वो सत्य नहीं है, समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। परीक्षण करो और इस परीक्षण के द्वारा न केवल संसार के भोग अपितु स्वर्ग आदि जो है ना, यहाँ दुनिया पृथ्वी के ही नहीं, स्वर्ग आदि भोग वो भी तुम्हें पता चल जाएंगे कि मिथ्या है, झूठे हैं। तो कहा उनको देखे बिना ही वो पता चल जाएंगे कि झूठे हैं? बोले बिल्कुल। कैसे? तो कहा स्वर्ग भी कैसे मिलता है? कर्म के द्वारा। कर्म के द्वारा जो जो प्राप्त होता है वो सब अनित्य है, ये धारणा को प्राप्त हो जाओ। जब तुम्हारे मन में ये बात आ जाएगी, समझ में आएगी, परीक्षण करके देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि संसार में सुख नहीं है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लोगों से निवेदन करता हूँ, विशेष करके साधकों से जरूर कहता हूँ कि आप परीक्षण जरूर करो। हमारे महाराज पूज्य चरण गुरुदेव भगवान जब हमको सिखाते थे, पढ़ाते थे, तो उन्होंने कैसे पढ़ाया आप आश्चर्य करेंगे, हम तो छोटे ही थे। तो उन्होंने गीता पढ़ाया, उन्होंने कहा कि संसार झूठा है। उन्होंने गीता में पढ़ाया क्या है कि जो कुछ भी संसार तुम्हें नजर आ रहा है, तुम एक बात का ध्यान रखना, नमे किंचित करो मिति युक्तो मन्ये तत्त्वविद्, मैं करता नहीं हूं, ये तत्त्ववेत्ता का निश्चय है, ये गीता कहती है। तो अर्जुन ने पूछा कि ये निश्चय मुझे कब करना है, नमे किंचित करो मिति, ये कब निश्चय करना है? तो ये नहीं कहा कि सबसे सवेरे पूजा करने जाना तो तुम निश्चय कर लेना नमे किंचित करो मिति। ये नहीं कहा कि जब तुम प्रेमपुरी आश्रम में आना तब तुम निश्चय कर लेना नमे किंचित करो मिति। तो कब करना है? पश्चन श्रृणवन स्पृशन जिघ्रन नश्नन गच्छन सपन ससन, देखते हुए जब भी तुम देखो, और तब तुम्हारे मन में यह निश्चय हो कि नहीं नहीं मैं देखने वाला कहा। जब भी तुम सुनो तब तुम्हारे मन में यह निश्चय हो कि नहीं नहीं मैं सुनने वाला कहा। ये महाराज श्री ने हमको पढ़ाया, गुरु जी ने हमको पढ़ाया, हम तो बच्चे थे, हम समझ रहे थे, किताब पढ़ रहे हैं, याद कर लेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, मंच पर बैठ करके माइक में बोलने लगेंगे, लोग तालियां बजाएंगे, क्या बात है, छोटा सा लड़का इतना बढ़िया बोलता है, हम तो इसीलिए पढ़ रहे थे, हमें क्या पता था। और आप आश्चर्य करेंगे कि पढ़ने के बाद हम भोजन करने गए किसी भक्त के घर, ये अपनी बात कह रहा हूं, दोष आपका नहीं है, हमारा भी। भोजन करने गए तो वो खीर बहुत बढ़िया बनाते, खीर बोलते क्या बोलते, खीर बहुत बढ़िया बनाते थे, और मैं खा रहा हूं, बड़ी अच्छी लग रही, बड़ा मजा आ रहा है, और आराम से खा रहा हूं, मुझे कहां गीता याद, मुझे कहां याद कि वो भगवान ने आज कहा है, स्वामी जी नहीं, आज गुरु महाराज ने आज हमको समझाया है कि नमे किंचित करो मिति, ये निश्चय करो खाते हुए भी कि मैं नहीं खा रहा हूं। और हमारे महाराज ने वही पूछा हमसे, सबके सामने पूछा, भक्तों के वहां पूछा, खाते समय पूछा कि चिदंबर एक बात बताओ। मैंने कहा क्या? कि अभी तुम ईमानदारी से बोलना, सच बोलना, कि अभी तुम खीर खा रहे थे तो आज जो तुमने पढ़ा था वो तुमको याद था कि नहीं? मैं चकित रह गया, खोपड़ी खराब हो गई कि ये खीर खाने के समय भी याद करने वाली बात है क्या? क्या इस समय पर भी याद करने की चीज है क्या? और आप आश्चर्य करेंगे, धन्य हो गए हम उस दिन, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गुरु महाराज यहां भी सावधान करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि तुम बताओ कि खाते समय तुम्हें वो याद रहा? मैंने कहा सच बोलो, तो कहा, मैंने कहा बिल्कुल याद है यार, दूर दूर तक भी याद नहीं रहा, ऐसा भी याद नहीं रहा कि आप यहां बैठे हैं और आप मुझे याद दिलाएंगे, ये भी याद नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार उन्होंने याद दिला दिया फिर उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा भी नहीं है। फिर हम सावधान रहने लगे, लेकिन कितना रहोगे, ये मन ही तो है। फिर महाराज गए आश्रम में, लेके गए हमको, कहा चलो आज फुटबॉल खेलते हैं। मैंने कहा ठीक। मैं चकित रह गया, महात्मा और फुटबॉल, कोई साथ ही नहीं है, ऐसा हो सकता है? और वो खेलने लगे, हम साथ में खेल रहे थे, और जब खेलते खेलते डूब गए, होश ही नहीं रहा, हमें खाली गेंद दिखाई पड़े कि गोल करना है कि क्या करना है, वही नजर आए और कुछ नजर ही ना आए। और तब महाराज कहते हैं बताओ वो गीता याद है? मैं सिर पकड़ लिया। कि फुटबॉल खेलते समय पर भी हमको गीता याद रखनी है, कि हमको रोटी बनाते समय भी गीता याद रखनी है। यह है जीवन की सच्चाई, यह है ज्ञान की सच्चाई, यह है विवेक की सच्चाई। हमें ऐसे करना है हा? तो मैं वो सतत ये चिंतन याद रखना है। मैंने आपको कहा परीक्षण करो हा? तुम्हारे मन में अगर कोई चीज की अभिलाषा है, रसगुल्ला खाने का दिल करता है, तो तुम मन से पूछो मेरे बेटा तुमने कितनी बार रसगुल्ला खाया है, जरा बताओ तो सही। तो मन कहेगा खाया तो बहुत बार है, अच्छा लगा हाँ, कितनी देर, गले से नीचे उतरा पता नहीं चलता हाँ, मालूम पड़ता है। गले से नीचे उतरने के बाद तुम उसके टेस्ट को, उसके स्वाद को याद कर सकते हो हाँ? अनुभव नहीं कर सकते, कर सकते हो गले से नीचे उतरने के बाद? थोड़ा दिमाग लगाओ हाँ? कि जैसे तुमने खाया बड़ा रस मिला, बड़ा आनंद मिला, तीनों लोग वहीं नजर आने लगे, लेकिन जहां वो चबाने के बाद नीचे गया, खत्म समाप्त। अब तुम खाली याद करो, स्मृतियां बनाओ कि बड़ा टेस्टी था हाँ? बड़ा सुंदर था। अब क्या करोगे, सुंदर था वो तो गया हाँ? उसका कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है। अब जो गया उसको तुम देखना भी नहीं चाहोगे। अब वो जो गया वो अगर लौट के आ जाए तो तुम्हारी हालत खराब हो जाए हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, सारा टेस्ट सारा स्वाद समाप्त हो जाए। जो गया है उसको तुम याद नहीं कर सकते। संसार की यह हकीकत है मेरे लाल, तुम क्यों इसमें पड़े हुए हो, मेरे मन तुम क्यों भटक रहे हो। खाओ, खाने का निषेध नहीं है, एक बात ध्यान रखना, यहां लोग फिसलते हैं हाँ? यही फिसलते हैं लोग, खाने का निषेध नहीं है, तुम जरूर खाओ। ये कोई नहीं कहता है कि तुम खीर और दाल एक में मिला दो तो तुम महात्मा हो जाओगे, मैं नहीं मानता हाँ? दाल को तुम दाल के तरीके से ही खाओ, खीर को तुम खीर, जानवर नहीं बनना है हमें, मनुष्य रहना है, बने रहना है, लेकिन विवेक के साथ में, आंख खोल करके। ये परमात्मा ने जैसे आंखें दी हैं, तो तुम आंखों से क्या करते हो, निश्चय करते हो कि नमक कौन है, कि शक्कर कौन है, कि दाल कहाँ है, कि खीर कहाँ है। तो तुम जब रोटी का निवाला बनाओगे, टुकड़ा निकालोगे, तो किसके साथ खाना, ये तुम्हें बोध है, और ये बोध बना रहना चाहिए, ये बोध होना ही चाहिए। लेकिन जैसे तुम आंख का उपयोग करते हो, जैसे तुम कान का उपयोग करते हो, महात्मा कहते हैं कि एक और चीज उस परमात्मा ने दी है बुद्धि, उसका भी उपयोग करो, खाते समय ही उपयोग करो, और खाते जाओ और मन में निश्चय करते जाओ, नमे किंचित करो मित्र। कितनी सरल बात है, कितनी सहज बात है। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, लोग मेरे पास आते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, लोग कहेंगे क्या कि हमें कुंडलिनी सिखाइए महाराज। हमसे ही सज्जन ने कहा कि महाराज जी कुंडलिनी योग क्या है वो बताइए जरा, कुंडलिनी जागृत कैसे होती है, उसके चक्कर में पड़ेंगे हा? लेकिन अगर हम सीधी सरल बात बताएं, हम आपको अत्यंत सरल बात बताएं, आप वो नहीं करोगे, क्योंकि वहां अहंकार की पुष्टि नहीं होगी ना। कुंडलिनी जागृत होने के बाद या जागृत हो ना हो हा? कुंडलिनी के रास्ते पर अगर तुम चल पड़े तो दूसरे से कहने में मजा आएगा, मालूम है। आजकल हम कुंडलिनी सीख रहे हैं, पता है आपको, आजकल हम ध्यान सीख रहे हैं, ध्यान का ध्या भी नहीं मालूम है, लेकिन ध्यान सीख रहे हैं, तो कहने में मजा आता है। हम आज योगा कर रहे हैं, हमें पता है कि कहने में थोड़ा मजा आएगा, हमारे अहंकार को बल मिलेगा, हमारा अहंकार पुष्ट होगा। लेकिन मैं सीधी बात बताऊं, सरल बात बताऊं, वो कर भी लोगे तो किसको पता कैसे चलेगा, तो तुम्हारी महत्ता कहां रही, तुम्हारी महिमा कहां रही। इसलिए वो सीधी सरल बात हमसे हो नहीं पाती, हम कर नहीं पाते। सीधी बात बताए, नवे किंचित करोमिति युक्तो मन्यते तत्त्वित, ये सीधी बात है, ये सरल बात है, इससे सरल और कोई बात हो भी नहीं सकती, कुछ नहीं हो सकती। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान सरल है, उस आत्मत्व को, तत्व को जानना सरल है हा? क्यों सरल है, परमात्मा पाना इसलिए सरल है क्योंकि वो तुम्हारा ही स्वरूप है। लेकिन मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि ये जो पकड़े हुए हो वो छूटता नहीं हा? जो पकड़े हुए हो, अहंकार अभिमान संसार दुनियादारी मोह माया, ये इतना तुम ही पकड़े हुए, ये छूटता नहीं, ये जिस दिन छूट जाए उस दिन वो परमात्मा सरल है, उन्हीं को छोड़ने के लिए साधन है। तो शास्त्र कहते हैं, मैं कहता हूं कि सबसे, भगवान कृष्ण कहते हैं, पूरी गीता आप पढ़ लीजिए, इससे सरल साधन कुछ नहीं मिलेगा। नवे किंचित करो मिति युक्तो मन्ये तत्त्वित, पश्यन् श्रृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् सुसन् प्रलपन् विसृजन् गृहन् नुन्मिशन् निमिशन् नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारयन्। बीच के जो श्लोक है ना, उसमें तो खाली क्रियाएं बताई गई है कि देखते हुए, चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, लेते हुए, देते हुए। आपको ये चिंतन करना है, क्या नवे किंचित करो मिति, मैं कुछ करने वाला नहीं। तो कौन करता है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धारयन्। इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्तन कर रही हैं। आंख क्या करती है, बोलो, आंख क्या करती है, देखती है। कान क्या करते हैं, सुनते हैं। हाथ क्या करते हैं, लेने देने का काम करते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि आंख देखती है, कान विरोध करता है, बोलो, नहीं। कान सुनता है, आंख देखने का, आंख सुनने का विरोध करती है, कान आंख के बीच में नहीं आता, आंख कान के बीच में नहीं आता। और ध्यान देना, आंख देखती है रूप, सुन नहीं सकती। कान सुनते हैं शब्द, देख नहीं सकते। अपना अपना काम, अपने अपने काम में लगे हुए हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम भी अपना काम करो, इनके झंझट में क्यों पड़े हुए हो। आंख देख रही है, तुम्हें देखने दो। आंख देख रही है, तुम इसे देखने दो। तुम ये क्यों कहते हो मैंने देखा। देख रही है आंख, कहते क्या हो, मैंने देखा। सुन रहे हैं कान, कहते क्या हो, मैंने सुना। कान सुन रहे हैं, सुनने दो। जैसे कि कान आंख के बीच में नहीं आते, जैसे कि आंख कान के बीच में नहीं आती, ऐसी तुम आंख के बीच में, देखने के बीच में मत आओ भाई। ये कान सीधी सी बात है कि नहीं, बोलो। हा? सरल बात है कि नहीं, कठिन कहां है, सहज है। भगवान कहते हैं कि जो देख रहा है देखने दो, तुम देखने वाले नहीं हो। जो सुन रहा है सुनने दो, तुम सुनने के बीच में मत आओ। बस इतना ही निवेदन है। तुम किसी में टांग मत अड़ाओ, यही निवेदन है और कुछ नहीं। इंद्रियां अपने गुणों में वर्तन कर रही, कितनी बढ़िया बात है। आंख का देखना धर्म है तो आंख देख रही है, कान का सुनना धर्म है तो कान सुन रहे हैं। तुम्हारा धर्म क्या है, तो कुछ नहीं, दृष्टा साक्षी। हमारा धर्म यही है, प्रकाशित करते हैं हम। तो श्रेयान से क्या है, गीता में एक और श्लोक है, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म हो भयाव। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, ये धर्म और कुछ नहीं है। आप अपने आप को याद करो, आपने इंद्रियों के धर्म को अपना लिया इसलिए बर्बाद हो गए। आपने शरीर के धर्मों को अपना लिया इसलिए डरने लगे, हाय मर न जाए कहीं, हाय परेशान न हो जाए। तुम मरने वाले नहीं हो, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। तुम्हें तो शास्त्र न जायते मृते वा कदाचिन कहते हैं, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, तुम अजन्मा हो शास्त्र कहते हैं। और तुम्हारी अपनी स्वयं की अनुभूति है। महाराज जी को मैं सुन रहा था, अखंडा जी महाराज को, और बहुत बढ़िया कहा कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। तो कहा कैसे कह सकते हो, उन्होंने कहा अगर तुम मरे होते तो आज नहीं होते। कितनी प्यारी बात है, महात्माओं की बातें ऐसी ही होती कि अगर तुम मरे होते तो आज नहीं होते। तुम्हारा आज ये साबित कर रहा है कि तुम्हारी मृत्यु कभी नहीं हुई। ये बात नहीं समझ में आई, बात कितनी सरल है कि तुम्हारा आज ये पेड़ ये साबित करता है कि ये कभी था, बीज रूप में कभी था, ये कभी समाप्त नहीं हुआ। तो तुम्हारा आज ये साबित करता है कि तुम कभी, तुम्हारा विनाश नहीं हुआ, तुम समाप्त नहीं हुए, तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। ये शास्त्र भी कहते हैं तुम्हारी मृत्यु नहीं होती, ये तुम भी जानते हो, तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी डरते हो, फिर भी भय लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि दूसरे के धर्म को तुमने अपना लिया है। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। दूसरे का धर्म हमेशा भयावह है, भयानक है, डराने वाला है। वो दूसरे का धर्म क्या है, यहाँ मुसलमान का धर्म मत समझ लेना, यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म मत समझ लेना। गीता है, अनुपम है, गीता अद्भुत है, तो वो और कोई धर्म नहीं, ये अपना धर्म। ये यहाँ आत्मा ने दूसरे का धर्म अपना लिया, शरीर का धर्म अपना लिया, हम परधर्मी हो गए। बुरा मत मानना, हम विधर्मी हो गए। विधर्मी जानते हो, विधर्मी हो गए, हम पतित हो गए। कहां हमारा स्वरूप आत्म तत्व था और कहां हम मर गए। एक भोले बाबा हुए, बड़े मस्त मौला महात्मा हुए, उन्होंने लिखा है तू ईश का भी ईश है लेकिन चाह करके भ्रष्ट है। है तू परमात्मा का भी परमात्मा, है तू ईश्वर का भी ईश्वर। स्वामी राम कहते थे कि राम कहता है तो सूर्य उदय होता है, क्या बात है। राम कहता है तो चंद्रमा उदय होता है, राम कहता है तो ये हवा चलती है। तू ईश का भी ईश है, तू सारे संसार का संचालक है। तो एक सज्जन बोले अगर मैं ईश्वर का ईश हूं तो दुखी क्यों हो रहा हूं, चाह करके भ्रष्ट है, तूने इच्छाएं की, इन बंधनों में पड़ा, शरीर के धर्म को तुमने अपनाया, मन का गुलाम हो गया, इसलिए भ्रष्ट है। वास्तव में तो तू परमात्मा का भी परमात्मा है, कितनी प्यारी बात है। तस्य त्वं तम सौंधत्य दुष्पारस्याद्य पारगम सचक्षुर जन्मनावन्ते लब्धम् एतदनुग्रहात्। महात्मा की आंख से देखना सीखो, सहज है सरल है, लेकिन ये चीजें होती नहीं है। तब हम कहेंगे कि महाराज कुछ सिखाइए, मन नहीं लगता है। खाते हुए ये ज्ञान है, खाते हुए हा? ये ज्ञानी लोग ये नहीं कहते हैं कि तुम ध्यान करने कमरे में बैठ जाओ तब तुम्हारा ध्यान होगा। वो दिखाने के लिए होता है कि देखो हम कितने बड़े ध्यानी हैं। ये ध्यान इस कमरे में बैठ करके करो, ये जो परमात्मा ने तुमको दिया है, नहीं समझे। ये कमरा इसीलिए दिया था कि यहां बैठ के तुम ध्यान करो, लेकिन तुम इसको लेकर के घूमने लगे। ओहो, ये मकान दिया था कि ताकि तुम यहां बैठ करके चिंतन कर लो, लेकिन हमने इस मकान को खिलौना बना दिया, हम लेकर के घूमने लगे, चलो यहाँ चलो यहाँ। इसकी उपयोगिता ही बदल दी, इसका रूपक ही बदल दिया, इसका उपयोग ही बदल दिया। उपयोग दिया था कुछ और करने के लिए, और करने हम कुछ और लगे। हमारे पूज्य चरण गुरुदेव भगवान बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो यही हुआ। दक्षिणावर्ती संघ देखा है, दक्षिणावर्ती संघ बड़ा कीमती है, मिलता नहीं है, और एक आदमी को मिल गया तो उसने उसका क्या किया पता है, उसके मिट्टी का घड़ा फूट गया, मिट्टी के घड़े में छिद्र हो गया, तो उस छेद को बंद करने के लिए उसने क्या किया, उस शंख को तोड़ दिया और पीस करके और लगा दिया उसको। क्या ये शंख इसीलिए था, इस शंख का उपयोग है उसने किया, उसे पता नहीं था इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन हमें तो मालूम है, हम सत्संग सुन रहे हैं। आखिरी बात कह करके आज को विराम दूंगा। एक महात्मा का उपदेश मुझे याद आया कि एक व्यक्ति जा रहा था, मैंने त्यागमूर्ति जी महाराज से सुना, धोबी था वो, धोबी गधे थे उसके पास में, और कपड़े धोते धोते उसको नदी में एक पत्थर मिल गया। तो पत्थर तो हीरा था, लेकिन वो क्या जाने हीरा, उसको बड़ा सुंदर लगा, बड़ा पत्थर चमक रहा था, बोले बड़ा सुंदर है क्या करूं। तो गधों में भी, गधे पाल रखे थे तो गधों में भी वो एक गधा उसको प्रिय था, ऐसा होता है हा? एक गधे को बड़ा अनुराग करे, बड़ा प्रेम करे, तो क्या करे, तो वही हीरा लेकर के उसके गले में टांग दिए, ये गधा बड़ा सुंदर है हमारा, सुंदर लगेगा, टांगा तो बड़ा अच्छा लगने लगा, खुश हो गया और कपड़ा ले जाकर के दूसरों को दे, यही काम करे। एक दिन रास्ते से गुजर रहा था तो किसी जौहरी की नजर पड़ी, बोले बाप रे करोड़ों का हीरा गधे के गले में, ये इसका उपयोग, क्या करूं, अगर कहूं कि ये हीरा है तो ये बहुत पैसा मांगेगा। तो दिमाग भिड़ाया, पहुंचा पास में और कहा भाई मैं बड़ा दुखी हूं। धोबी ने कहा तुम दुखी हो, मैं क्या करूं। तो कहा नहीं, एक ज्योतिषी मिला था, ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारे दिन बड़े बुरे चल रहे हैं। बोले ज्योतिषी मिला था, दिन बुरे चल रहे हैं, आप हमें क्यों कह रहे हो। बोले उसने एक उपाय बताया था। क्या? बोले एक पत्थर है, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी सारी गणनाएं ठीक हो जाए, ज्योतिष की सारी गणनाएं सुधर जाए। बोले तो ढूंढो जाकर। बोले ढूंढना क्या, वो तुम्हारे पास है, ये गधे के गले में टांग रखा है। धोबी कहता बात तो तुम सही कहते हो, ये भी पहले बीमार रहता था, जब से टांगा है ये भी मस्त रहने लगा, बड़ा कमाल का पत्थर है, ये मैं नहीं देने वाला। जौहरी ने कहा इस गधे की कीमत हमसे ज्यादा। अरे भाई मैं ऐसे थोड़ी मांग रहा हूं, तुम कुछ दाम ले लो, फ्री में थोड़ी ले रहा हूं, पुरानी बात, पुरानी जमाने की। उसने कहा मैंने को बेचना नहीं, ये पीछे पड़ गया, लालच दिया कि तुम जितना कहोगे उतना हम तुम्हें पैसा देंगे। तो धोबी सोचने लगा कि आने जाने में बड़ी मुश्किल होती है, कितना परिश्रम होता है, अगर मैं इसे 2 रुपए मांगू तो ये देगा। उसने ताकत लगा के कहा कि नहीं 3 रुपए आप हमको दे। उसने सोचा 3 रुपए बोलूंगा ये ना बोल देगा, छूट जाएगा, तो कहा 3 रुपए दो। अब ये झवेरी भी बड़े विचित्र होते हैं, इसने सोचा कि 3 की जगह 2.5 में ही काम चल जाए तो बढ़िया, करोड़ों की चीज और सौदेबाजी करने लगा। आदत से आदमी बाज नहीं आता है, कहा 3 नहीं 2 ही दूंगा, बात ज्यादा बड़ी बोले 2.5 दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। वो जानता था 3.5 रुपए में भी आएगा ये वापस। उसने कहा नहीं देना है तो मत दो, हम तो जा रहे हैं, और चला गया। बदकिस्मती जौहरी के दूसरा जौहरी मिल गया उसको, उसने भी वही कहा, उसने कहा मुझे बेचना ही नहीं है। बोले नहीं नहीं तुम जो कहोगे। बोले उसने भी कहा था पहले वाले ने, तो कहा नहीं उसने कहा था मैं दूंगा, तुमको कितना चाहिए। उसने 50 पैसा बढ़ा दिया, बोले 3.5 रुपए। उसने निकाल कर तुरंत दे दी। जब इसने देखा कि वो तो जा रहा है हीरा, तब वो पास में आया और धोबी से कहा कि तुम बड़े बेवकूफ। कहा मैं क्यों बेवकूफ, और तुम्हें मालूम है कि जो चीज तुमने 3 रुपए में दी है वो क्या है, वो सामान्य पत्थर नहीं, वो करोड़ों रुपए का हीरा है। धोबी हंसने लगा, कहा कि तुम्हें रोना चाहिए, तुम हंस रहे हो। बोले महाराज बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तुम हो, मैंने तो पत्थर की कीमत लगाई थी और पत्थर की कीमत 3 रुपए बहुत है, और तुम तो जानते थे कि करोड़ों का हीरा है, तुमने तो 50 पैसे के लिए इसे छोड़ दिया, बेवकूफ मैं हूं कि तुम हो। तो जो लोग सत्संग नहीं करते उन्हें पता है, उन्हें मालूम है, लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें मालूम नहीं है, लेकिन जो लोग करते हैं और वे अगर जानबूझ के गड़बड़ करें तो दोष है। मैंने सोचा तो भजन सुनाऊंगा, समय हो गया, 2 बार भगवान का नाम ले लीजिए, फिर कल से भजन सुनाएं।
श्री राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम श्री गुरुदेव राम।